सुबह की पहली रोशनी हवेली की मोटी दीवारों को छूती हुई भीतर सरक रही थी। आंगन में लगे पीपल के पत्ते हल्की हवा में सरसराए और कहीं दूर से मंदिर की घंटी की मध्यम सी आवाज आई, जैसे रात के बाद सुबह ने धीरे से दस्तक दी हो। कमरे के भीतर सब शांत था। आर्यन और अदिति गहली नींद में थे। रात की थकान, पढ़ाई का बोझ और बीच बीच में पनपी वो नजदीकी, सब कुछ जैसे एक साथ मिलकर नींद बन गया हो। आर्यन करवट लेकर सोया था, उसका एक हाथ तकिए के किनारे ढीला सा पड़ा था। अदिति उसके पास थोड़ी सी सिमटी हुई, जैसे नींद में भी किसी अदृश्य सुरक्षा के दायरे में हो। पर्दे के पीछे से छनकर आती रोशनी उनके चेहरों पर हल्की लकीरें खींच रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। छोटी ठाकुराइन, मधु की आवाज बहुत धीमी थी, आदर और झिझक से भरी। फिर एक पल का ठहराव। अदिति जी, अंदर कोई हरकत नहीं हुई। अदिति ने नींद में हल्की सी करवट बदली, उसकी बौहें सिकुड़ी जैसे किसी आवाज ने सपने को छुआ हो, पर थकान इतनी गहरी थी कि पलकें खुल ही ना सकीं। उसने अनजाने में तकिया और पास खींच लिया और फिर से नींद में डूब गई। बाहर मधु ने फिर से दरवाजा खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर देकर। छोटी ठाकुराइन, उठिए ना, सुबह हो गई है। फिर भी सन्नाटा। मधु ने एक पल दरवाजे की ओर देखा, उसके चेहरे पर उलझन और हिचक दोनों थे। हवेली के उस हिस्से में बिना इजाजत जाना उसे ठीक नहीं लगा। उसने हल्की सी सांस ली, सिर झुकाया और धीरे धीरे वापस मुड़ गई। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी चूड़ियां हल्की सी खनकी। आंगन पार कर वो रसोई की ओर बढ़ी, जहां सुबह की हलचल पहले ही शुरू हो चुकी थी। रसोई घर में लकड़ी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी थी। दूध की खुशबू हवा में घुल रही थी। मसालों के डिब्बे सजे थे और धूप खिड़की से अंदर आकर फर्श पर चौकोर रोशनी बना रही थी। वहीं पास खड़ी थी श्यामली, अपने सधे हुए अंदाज में साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक करती हुई। मधु को देखते ही श्यामली ने निगाह उठाई। मधु, उसने सीधे सवाल किया, अदिति को साथ नहीं लाई? मधु ने सिर झुका लिया। ठाकुराइन, मैंने आवाज़ दी, बहुत बार खटखटाया, पर छोटी ठाकुराइन उठी ही नहीं, लगता है अभी भी सो रही हैं। श्यामली के चेहरे पर हल्की सी शिकन उभरी, उसने चूल्हे की आंच कम की और एक पल के लिए सोच में डूब गई। तुम जानती हो ना, उसने धीमे पर सधे स्वर में कहा, नाश्ता सबको समय पर चाहिए, देर हो जाएगी तो सासू माँ को अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसने एक नज़र बर्तनों पर डाली, वैसे तो मैं सब बना लूंगी, पर अदिति अगर यहाँ नहीं होगी तो बातें बनेंगी। मधु ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुराइन मैं फिर जाकर देखाऊं? श्यामली ने हल्का सा सिर हिलाया, रहने दो, नींद में है तो जोर जबरदस्ती ठीक नहीं, मैं संभाल लूंगी। मधु एक कदम पीछे हटी, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, कुछ ऐसा जो उसने शब्दों में नहीं कहा। इधर ऊपर कमरे में समय धीरे धीरे सरक रहा था। आर्यन की नींद पहले टूटी, उसकी आंखें आधी खुली फिर बंद हुई। उसने गहरी सांस ली, कमरे की हवा में रात की ठंडक अब भी बची थी। वह सीधा लेटा रहा, जैसे किसी एहसास को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसे याद आया, रात, किताबें, अदिति की आवाज़, वह ठहराव। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी, अदिति अभी भी सो रही थी। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर नरमी से ठहरी थी, उसकी पलकों की हल्की सी परछाई, होठों पर नींद की मासूम शांति, सब कुछ बहुत शांत, बहुत घरेलू लग रहा था। आर्यन ने अनजाने में अपनी सांस धीमी कर ली, जैसे इस पल को जगा देना ठीक ना हो। वह उठा नहीं, बस उसी तरह लेटा रहा। कुछ पल बाद अदिति ने हल्का सा अंगड़ाई ली, उसके हाथ ऊपर उठे फिर धीरे से नीचे आए। आंखें खुली, पहले धुंधली फिर साफ। उसने छत की ओर देखा, जैसे जगह पहचान रही हो। फिर उसकी नजर आर्यन पर गई, एक सेकंड का सन्नाटा, फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, नींद से जागी मगर रात की यादों से जुड़ी हुई। सुबह हो गई? उसने धीमे से पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया, लगता है हाँ। अदिति उठकर बैठ गई, उसने बालों को पीछे किया और कमरे में नजर दौड़ाई। खिड़की से आती रोशनी, बिस्तर के पास किताबों का ढेर और वह दरवाजा जो अब शांत था। किसी ने आवाज दी थी? उसने जैसे अंदाजा लगाते हुए पूछा। आर्यन ने एक पल सोचा, शायद, मुझे लगा जैसे खटखट हुई हो, पर नींद गहरी थी। अदिति के चेहरे पर हल्की चिंता आई, मधु रही होगी। वह जल्दी से बिस्तर से उतरी, उसके कदमों में अब नींद नहीं थी, सिर्फ जिम्मेदारी। उसने घड़ी देखी और हल्की सी सांस ली, देर हो गई है, उसने खुद से कहा। आर्यन भी उठ खड़ा हुआ, तुम जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अदिति ने एक पल उसे देखा, वही नजर जिसमें रात की नजदीकी अब सुबह की समझदारी में ढल चुकी थी। उसने सिर हिलाया और बाथरूम की ओर बढ़ गई। नीचे रसोई में श्यामली ने काम समेट लिया था, नाश्ते की थालियां सजी थी। मधु एक तरफ खड़ी थी, बार बार सीढ़ियों की ओर देखती हुई। आ रही हैं क्या? उसने हिम्मत करके पूछा। श्यामली ने बस इतना कहा, आ जाएंगे। और उसी पल सीढ़ियों पर हल्की सी आहट हुई, हवेली की सुबह अधूरे सवाल और हवा में तैरती एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। रसोई घर में अदिति के कदम रखते ही माहौल में हल्का सा बदलाव आ गया। उसकी चाल में अभी भी नींद की नरमी थी, लेकिन चेहरे पर सलीके से संभलने की कोशिश साफ झलक रही थी। उसने साड़ी का पल्लू ठीक किया और सीधे श्यामली की ओर देखा। श्यामली, उसकी आवाज धीमी थी, थोड़ी सी झिझक लिए श्यामली ने उसकी ओर नजर उठाई। चेहरे पर न डांट थी न मुस्कान, बस एक ठहरा हुआ भाव। उठने में देर हो गई, उसने सहज सा पूछा, जैसे जवाब पहले से जानती हो। अदिति ने सिर झुका लिया। हाँ, रात को देर हो गई थी। मधु पास ही खड़ी थी, उसने राहत की सांस ली, मानो कोई बड़ी उलझन टल गई हो। ठाकुराइन, मैं तो सोच ही रही थी कि छोटी ठाकुराइन आई ही नहीं। तो हो गया मधु, श्यामली ने बात काट दी, अब आ गई है। अदिति चूल्हे के पास आकर खड़ी हो गई। मैं मदद कर दूं? उसके स्वर में कोशिश थी अपनी जगह फिर से ठीक करने की। श्यामली ने एक पल उसे देखा, फिर प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। ये पराठे निकाल दो और दही की कटोरी सजा दो। अदिति ने बिना कुछ कहे काम शुरू कर दिया। रसोई में बर्तनों की हल्की आवाजें गूंजने लगी। बाहर आंगन से आती सुबह की रोशनी अब तेज हो चली थी। मधु ने धीरे से पूछा, छोटी ठाकुराइन, चाय भी डाल दूं? हाँ, अदिति ने तुरंत कहा, मैं खुद लेकर जाऊंगी। श्यामली ने यह सुना पर कुछ कहा नहीं, बस अपने काम में लगी रही। उसके मन में सवाल थे, पर वह जानती थी कि हर सवाल का जवाब अभी नहीं मांगा जाता। कुछ ही देर में नाश्ते की थालियां तैयार थीं। अदिति ने एक नजर सब पर डाली, जैसे संतुष्ट होना चाहती हो कि कहीं कुछ छूट ना जाए। मैं ऊपर दे आती हूँ, श्यामली ने सिर हिलाया, ले जाओ। अदिति थाली उठाकर बाहर की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर अब घबराहट कम थी और जिम्मेदारी ज्यादा। रसोई में फिर वही रोजमर्रा की गति लौट आई, लेकिन सुबह की इस छोटी सी देरी ने हवेली के भीतर एक हल्का सा सवाल छोड़ दिया था, जो अभी शब्दों में नहीं ढला था।